الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين إلى الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. ان دعاؤں کے ساتھ ہم آج کی تفسیر کی کلاس پڑھنا شروع کرتے ہیں. سے سورۃ النمل کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں اور آیات ہیں آیت نمبر 20 سے 28 تک. تو ان کا ترجمہ خلاصہ تفسیر پڑھ لیا تھا، معرف و مسائل ہم پڑھ رہے تھے، جس میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری عنوان باندھا تھا ہیڈنگ، وہ تھی کہ اپنے نفس کا محاسبہ. تو اپنے اکابرین، اپنے اولیاء کرام، بزرگوں کے بارے میں حضرت نے بتایا تھا کہ ان کو جب بھی کوئی تکلیف، کسی نعمت میں کمی آئے یا کوئی تکلیف یا پریشانی لاحق ہو، تو وہ اس کے ازالے کے لیے مادی اسباب کی طرف توجہ کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اب ہم جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اگلا عنوان حضرت نے یہ لکھا ہے کہ طیور میں سے ہدہد کی تخصیص کی وجہ اور ایک اہم عبرت. پیج نمبر 571. جی 571. ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، قدرتن یہ پڑھا تو میں نے بعد میں، لیکن جب ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے تو اس وقت یہ واقعہ یاد آ گیا تھا. تو آپ کو ہم پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں ہدہد کی تفتیش کی کیا وجہ پیش آئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، زمین کے اندر بہنے والے چشمے تو یعنی انڈر گراؤنڈ واٹر، یا تو ریزرووائرز ہیں یا واٹر سٹریمز ہیں. جیسے کہ ہم پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں پاکستان میں، اگر مری وغیرہ کے علاقے میں جائیں تو آپ کو ایک دم سے نظر آتا ہے کہ پہاڑ کے اندر سے پانی نکل رہا ہے. تو بھئی اگر پانی نکل رہا ہے تو وہ وہیں پہ کریٹ کوئی تھوڑی ہو رہا ہے، بلکہ وہ کہیں سے ایک سٹریم ہے جو کہ اس پہاڑ کے اندر سے آ رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے کسی ایسی جگہ سے کہیں نہ کہیں سے کنیکٹڈ ہے کہ جہاں پر کہ وہ برف جو ہے پگھل رہی ہوگی، تو وہاں سے پانی جو ہے وہ اس پہاڑ کے اندر چلا گیا، اور اندر ایک اس قسم کی کوئی ٹنل ہوگی تو اس سے ہوتے ہوئے پھر وہ کہیں سے نکل رہا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یعنی ایک تو یہ ہوتی ہیں جو کہ ایک ٹنل ٹائپ کی ایک بنی ہوئی ہے جو کہ کہیں سے پانی داخل ہوا اور دوسری طرف سے پانی نکل گیا، اور دوسری قسم کی کا پانی جو زیر زمین ہوتا ہے وہ واٹر ریزروائرز ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے، جیسے کہ گویا کے سیکس ہیں، یعنی مشکیزے ٹائپ کی بہت بڑی بڑی جو ہے نا وہ سٹرکچرز ہیں پانی کے اندر موجود، وہ زمین کے اندر موجود ہیں، ارتھ کرسٹ کے اندر. ارتھ کرسٹ جو ہے نا یہ کوئی 50 kilometers ڈیپ یا 50 miles ڈیپ، کوئی اس کی ایگزیکٹلی کتنی اس کی تھکنیس ہے یہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ اوپر کا جو ایک چھلکا ہے زمین کا، اس کے اندر یہ سب کچھ ہے، جس کے اندر پانی بھی ہے، جس کے اندر مٹی بھی ہے، جس کے اندر یہ معدنیات بھی ہیں، منرلز وغیرہ بھی ہیں، اور سب کچھ بیسکلی ہمارا اسی کے اندر موجود ہے. اس کے نیچے جو لیئرز ہیں نا، وہاں تک تو کوئی انسان آج تک پہنچا ہی نہیں، بلکہ انسان تو کیا، انسان کی مشینری بھی آج تک اس سے نیچے نہیں پہنچ سکی، کیونکہ وہ سارا کا سارا جو ہے نا نیچے ارتھ کرسٹ کے نیچے جو ہے وہ اتنا ہارڈ ہے کہ کوئی ڈرل نہیں کر سکا آج تک اس کے اندر. تو یہیں پر سارا کا سارا پانی بھی موجود ہے. اسی پانی کے اندر جب کوئی یعنی کوئی جب ہم ویل بناتے ہیں، کوئی چشمہ یا سوری کوئی کنواں بناتے ہیں، تو اسی کسی واٹر ریزروائر سے جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ہول بن چھوٹا سا ایک ہول بن جاتا ہے اس کے اندر، اور اس میں سے جو ہے وہ رس رس کے پانی اس کنویں کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ لوگوں نے شاید وہ ریسرچ بھی دیکھی ہوگی کہ جو زمزم کا جو کنواں ہے، تو زمزم کے کنویں کا بھی ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے اندر ڈیپ چلے جائیں تو نیچے کوئی واٹر ریزروائر ہونا چاہیے، جس طرح سارے کنوؤں کے نیچے جو ہے وہ ایک واٹر ریزروائر ہوتا ہے، اس میں سے پانی آ رہا ہوتا ہے. لیکن जिन लोगों ने तहकीक वगैरह करी है इसकी, तो उसमें मैंने देखा था कि जी जमजम क्यों की डेप्थ में आप चले जाए ना, तो वहां पर कोई वाटर रिजर्वायर नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो पानी कहीं से आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? हमारा तो ईमान है कि वो जन्नत में से आ रहा है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। ठीक है, तो खैर, तो हुदहुद को इस किस्म की खासियत अल्लाह ताला ने अता फरमाई कि जमीन के अंदर की चीजों को और जमीन के अंदर बहने वाले चश्मों को देख लेता है। ठीक है, तो ये देखना जो है ना, ये भी एक ऐसी एबिलिटी है कि इसमें भी इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ही लिमिटेड विजन कैपेबिलिटी दी है। जिस तरह से सुनने के ना हमारी फ्रीक्वेंसी बैंड जिसके अंदर हम सुन सकते हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, जबकि जानवरों को अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ्रीक्वेंसी बैंड दिया है कि जिसमें वो ऐसी आवाजें सुन लेते हैं जो कि हम नहीं सुन सकते। मिसाल के तौर पर कि जो अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर्स जो होते हैं, जहाँ पे कि वो यानी बेसिकली सेंस कर रहे होते हैं कि जी अर्थक्वेक आ रहा है कि नहीं, तो जहाँ इंसानों के बनाए हुए वहाँ पे इक्विपमेंट लगे होते हैं, वहीं पर उन्होंने जो है ना वो गिनी पिग्स और रैट्स और माउस वगैरह रखे हुए होते हैं। वो क्यों रखे होते हैं पिंजरों के अंदर? क्योंकि जब अर्थक्वेक आना शुरू होता है ना, तो बहुत डीप डाउन जो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जमीन के अंदर, वो हिलनी शुरू हो जाती हैं, और उनके हिलने का असर जो है ना वो बिल आखिर ऊपर पहुंचता है, और फिर पूरी की पूरी जमीन हिलना शुरू हो जाती है। लेकिन उस हिलने की जो आवाज क्रिएट होती है, तो उस आवाज को जो है ना ये एनिमल सुन लेते हैं, और सुन करके जो है ना ये उछलना कूदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये भागने की कोशिश करते हैं। उनको पता है कि अब जो है ना जहां पर जलजला आने वाला है, तो भागने के लिए वो कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि पिंजरे में बंद होते हैं तो वो भाग नहीं सकते, तो वो उछलना कूदना ही ज्यादा सारा कर सकते हैं। हमने बल्कि बच्चों ने पढ़ा था, तो वो हमें बता रहे थे 2-3 दिन पहले की बात है कि जब सुनामी आया था 2005 में ना गालबन, जो इंडोनेशिया के सबसे ज्यादा तबाही इंडोनेशिया में हुई थी, और 7 डिफरेंट कंट्रीज, श्रीलंका और इंडिया और न जाने ये सारे कंट्रीज मुतासर हुए थे उससे। तो उस सुनामी के अंदर जितनी जो डेड बॉडीज मिले ना इंसानों की भी, तो उनमें किसी एक भी वाइल्ड एनिमल की डेड बॉडी नहीं मिली। वाइल्ड एनिमल कोई था ही नहीं मरने वालों में से, सिर्फ जो जानवर मरे हुए मिले, जो बाद में पानी छट गया ना, पानी तो वापस चला गया, रिट्रैक्ट हो गया, तो जब पानी चला गया तो फिर लोगों की लाशें मिली वहां पर। तो भाई जानवरों की भी लाशें होनी चाहिए थी, जानवरों की लाशें नहीं थी, सिर्फ पेट एनिमल्स की लाशें थी जो कि घरों के अंदर फंसे हुए थे, वो भाग ही नहीं सकते थे। बाकी जानवर किधर चले गए? सारे के सारे, वो सारे के सारे पहले ही भाग चुके थे वहां से। ठीक है, क्योंकि समंदर के अंदर जलजला आया, जलजले से जो है वो सुनामी की वेव्स क्रिएट हुई, और वो जब तक जमीन पे पहुंची जानवर वहां से पहले ही भाग चुके थे। बहरहाल, तो जानवरों का अल्लाह ताला ने इस तरह की सलाहियतें इंसानों के मुकाबले में ज्यादा दी है। तो हम तो सबसे ज्यादा होता है ना निकम्मे है, सबसे ज्यादा निकम्मी जो चीज है ना अल्लाह की मखलूक में से फिजिकल कैपेबिलिटीज के हिसाब से देखा जाए तो वो इंसान ही है। ठीक है, हाँ, अल्लाह ताला ने एक अकल दे दी है जो कि अगर हम सही इस्तेमाल करें तो हम अशरफुल मखलूकात बन जाते हैं, और उसी को अगर गलत इस्तेमाल करें तो असफलुस साफिलीन भी हम ही बनते हैं, सबसे ज्यादा बुरे हम ही बनते हैं। क्यों सबसे ज्यादा बुरे बन जाते हैं? भाई सबसे अच्छे नहीं बन सके तो चलो नॉर्मल लेवल के ऊपर तो रह जाए ना, लेकिन अकल को सही इस्तेमाल करते हैं तो अशरफुल मखलूकात बन जाते हैं, और अकल को गलत इस्तेमाल करते हैं तो असफलुस साफिलीन बन जाते हैं। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि दूसरी जो मखलूक है वो जहन्नुम के अंदर नहीं डाली जाएगी, जबकि इंसान अगर अकल को गलत इस्तेमाल करे ना तो वो जहन्नुम के अंदर डाला जाएगा। इस वजह से इंसान जो है वो असफुल साफरीन बनता है। बहरहाल, तो मकसूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये था कि हुदहुद से ये मालूम करें कि इस मैदान में पानी कितनी गहराई में है और किस जगह जमीन खोदने से पानी काफी मिल सकता है। हुदहुद की इस निशानदेही के बाद वो जिन्नात को हुक्म दे देते थे कि इस जमीन को खोद कर पानी निकालो। वो बड़ी जल्द खोद कर पानी निकाल लेते थे, क्योंकि जिन्नात से फिर सबसे ज्यादा जो तेज काम जो है ना वो जिन्नात ही कर सकते थे, तो उनसे फिर फिजिकल वर्क करवाया करते थे। हुदहुद अपनी तेज नजर और बसीरत के बावजूद शिकारी के जाल में फंस जाता है, यानी ऐसी अल्लाह ताला ने उसको साइट बियॉन्ड साइट अता फरमाई है कि वो फिजिकल लेयर्स के नीचे जो पानी है ना उसको पहचान लेता है। अब वो पहचानता कैसे? अब ये एग्जैक्टली डिटेल जो है वो साइंटिफिकली भी इसको देखा जा सकता है कि वो असल में उसको नजर आना जरूरी नहीं है, नजर तो उसको कैसे आएगा, लेकिन हो सकता है जो पानी नीचे मौजूद है उस पानी की भी एक वाइब एक जाहिर फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसकी भी एक वाइब्रेशन होती है जिसकी आवाज को वो सुन लेता था। ठीक है, तो ऐन मुमकिन है कि वो पानी का पता भी जो है ना वो आवाज के जरिए से चलाता था, हो सकता है, अल्लाह बेहतर जानता है उसको। तो फरमाते हैं कि हुदुद अपनी तेज नजर और बसीरत के बावजूद शिकारी के जाल में फंस जाता है। इस पर हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ने फरमाया, किफ या वक्काफ कैफ यरल हुदहुदु बातिन अल अर्दी व हुवा ला यरल फह हीन यकू फीही, के जान लो यानी रुको, पोंडर ओवर इट। किफ का मतलब है स्टॉप, है ना, यहाँ पे स्टॉप साइंस लगे होते हैं ना, उनके ऊपर किफ लिखा हुआ होता है, नीचे स्टॉप लिखा होता है। तो रुको यानी रुको का मतलब इस बात के ऊपर गौर करो, ठहरो, पॉन्डर ओवर इट, या वकाफ ए गौर करने वालों, ए गौर करने वालों इस बात के ऊपर गौर करो, इस हकीकत को पहचानो कि हुदहुद जमीन की गहराई की चीजों को देख लेता है मगर जमीन के ऊपर फैला हुआ जाल उसकी नजर से ओझल हो जाता है जिसमें वो फंस जाता है। ठीक है, तो शिकारी इंसान जो है ना वो अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए जाल ऐसा बनाता है कि हुदहुद को नजर नहीं आता, वो उसके अंदर फंस जाता है। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात फरमाई तो उसकी तशरीह बयान कर रहे हैं कि मकसद ये है कि हक तआला ने जो अमरे तकलीफ या सॉरी अमर तकलीफ या राहत का किसी के लिए मुकद्दर कर दिया है तो तकदीर इलाही नाफिज होकर रहती है। अल्लाह ताला का जो फैसला होता है ना उसको टाला नहीं जा सकता। कोई शख्स अपनी फहम व बसीरत या जोर व जर की ताकत के जरिए उससे नहीं बच सकता। ठीक है, यानी अगर अल्लाह की तरफ से किसी चीज का फैसला हो चुका है और ये तकदीर मुबरम के अंदर लिखा हुआ है, तकदीर मुबरम वो तकदीर जो कि चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है ना, अब कोई कुछ कर ले, कोई यानी उल्टा लटक जाए है या जो भी करे तो वो उसको नहीं तब्दील कर सकता। ठीक है, तो हम जो अपनी यानी अकल इस्तेमाल करते हैं या हम अपनी जो है वो आमाल इस्तेमाल करते हैं, दुआएं इस्तेमाल करते हैं, नेकियां इस्तेमाल करते हैं ताकि मुसीबत टल जाए, राइट, मुसीबत ना आए, ये सारी जो हम मेहनतें कर रहे होते हैं ना, ये हम मेहनतें जो कर रहे होते हैं दुआ के जरिए से करें या अकल लड़ाने के जरिए से करें या मशवरे के जरिए से करें या जिस भी जरिए से करें, तो ये जो हम कर रहे होते हैं इससे जो है ना वो तकदीर बदल जाती है, तकदीर की चीज टल जाती है। क्या मतलब? तकदीर मुबरम नहीं बदलती, तकदीर मुअल्लक बदल जाती है। तकदीर के दो दर्जे हैं, एक है मुबरम और एक है मुअल्लक। मुअल्लक का मतलब होता है समथिंग दैट सस्पेंडेड, कोई चीज किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना तो उसको मुअल्लक कहते हैं, ठीक है, लटकी हुई चीज। तो ये जो लटकी हुई तकदीर है ना, डिपेंडेंट तकदीर है, ये हमारी दुआ के ऊपर डिपेंड करती है। हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेते हैं, अल्लाह ताला किसी के रिस्क को बढ़ा देते हैं दुआ कबूल करके, दुआ कबूल कर लेते हैं अल्लाह ताला जो है किसी की उम्र को लंबा कर देते हैं, राइट, अल्लाह ताला किसी के ऊपर आने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। ये सब कुछ जो होता है ना, टालना या बड़ा हो जाना या छोटा हो जाना या कुछ भी हो जाना, ये सारा का सारा जो चेंजेस का मामला है ये तकदीर मुअल्लक के अंदर है। तकदीर मुबरम क्या है फिर? तकदीर मुबरम की जरूरत क्या है फिर? तकदीर मुबरम जो है ना ये अल्लाह ताला का इल्म है, अल्लाह ताला का इल्म अजली कि जिसमें कि अल्लाह ताला को सब कुछ पता है और वो अल्लाह ताला ने नोट डाउन करवाया हुआ है लोहे महफूज के अंदर एक मुकाम पर। ठीक है, वो चीज जो है ना वो अल्लाह ताला के चूंकि इल्म है, भाई अल्लाह ताला का इल्म जो है ना वो अल्लाह को पता है कि आगे क्या होना है, तो भाई इसके अंदर ये भी तो इंक्लूडेड है ना कि किसने दुआ मांगनी है, ये भी अल्लाह को पता है, किसने जो है वो नेकी का काम करना है, ये भी अल्लाह को पता है, किसने नेकी का काम नहीं करना है, ये भी अल्लाह ताला को पता है, किसका रिस्क जो है वो नेकी के नतीजे में बढ़ेगा ये भी अल्लाह को पता है, किसका रिस्क गुनाह की वजह से कम होगा ये भी अल्लाह को पता है, राइट, भाई अल्लाह का इल्म तो हर चीज के ऊपर मुहित है ना। ठीक है, अल्लाह तो ऐसा है ही नहीं ना कि जिसका इल्म जो है वो नाकिस हो, जिसका इल्म जो है वो इनकम्प्लीट हो, जिसका इल्म इनकम्प्लीट है वो तो अल्लाह है ही नहीं, राइट, जिसका इल्म जो है नाकिस है या जिसकी कुदरत नाकिस है वो तो अल्लाह है ही नहीं, तो अल्लाह तो है ही वो जिसके अंदर जो है वो किसी किस्म का नुक्स नहीं है। तो ये बातें सारी इस वजह से बताई जाती हैं ताकि हम हदीसों को समझ सकें, क्योंकि हदीसों में लिखा हुआ है ना ये बात मौजूद है कि दुआ से तकदीर बदल जाती है, और उसी तरह से हदीसों में ये भी मौजूद है कि अल्लाह ताला कि तकदीर जो है ना उसमें जो चीज अटल है वो नहीं चेंज होने वाली। तो अब भाई दोनों चीजें लिखी हुई है हदीस के अंदर, तो ये सही है कि वो सही है, ठीक है, या तो वो सही हो सकती है, ये सही होती हो सकती है, ये गलत हो सकती है, तो वो सही हो सकती है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी एक तफसीर ये होगी कि जहां पे नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह की बात फरमाई कि अल्लाह का फैसला अटल है वो नहीं बदल सकता, वहां पे नबी अलैहिस्सलाम तकदीर मुबरम की बात फरमा रहे हैं। और जहां पे ये बात फरमाई ना कि दुआ से तकदीर बदल जाती है, वहां पे नबी अलैहिस्सलाम तकदीर मुअल्लक की बात फरमा रहे हैं, उसका जिक्र फरमा रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से ये दोनों बातें समझा दी जाती हैं ताकि हम हदीस मुबारका के बारे में गलत फहमी में मुबतला ना हो जाए या बदगुमानी में मुबतला ना हो जाए कि इट डजेंट मेक सेंस, इट डजेंट, ये तो कोई तुक ही नहीं बनती इसकी, बेकार है सारा कुछ, क्योंकि इसकी तो सेंस ही नहीं बनती। नहीं, बिल्कुल सेंस बनती है, फर्क यह है कि हमारा इल्म कम है, ठीक है। हम इल्म हासिल कर लें, सब सेंस बनना शुरू हो जाएगा हमारे पास। एनीवे, तो यहाँ पे जो फरमाया ना कि तकदीर इलाही नाफिज होकर रहती है, तो भाई इसी को कॉर्पोरेट लैंग्वेज में एक जुमला कहा जाता है कि भाई रिजल्ट्स जो है ना वो हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारा काम है मेहनत करना, ठीक है। कॉर्पोरेट लैंग्वेज में तो खैर इसको जो है वो इतना पॉजिटिवली नहीं देखा जाता, बल्कि यहाँ पे क्या कहा जाता है, आई डोंट केयर वॉट यू डिड, आई डोंट केयर हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन सेल्स, हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन द ऑफिस, वी डोंट केयर, वी वॉन्ट रिजल्ट्स, है ना। हमें जो है ना रेवेन्यू चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए, तुम सारा दिन जो है वो दफ्तर में बैठे रहो मुझे मत बताओ कि तुम कितना, वीकेंड भी दफ्तर पे आते थे और तुम जो है वो रातें भी जो है वो दफ्तर में गुजारते थे और तुमने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी एक एक हफ्ते तक, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है तुमने क्या किया, हमें तो भाई नंबर्स दिखाओ, हमें तो नंबर्स दिखाओ, हमें तो रेवेन्यू ला करके दिखाओ। ये है दुनिया वालों का मामला, अल्लाह ताला का मामला बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला को सिर्फ जो है हमारी नीयत और हमारी एक एफर्ट, थोड़ी बहुत एफर्ट सिर्फ अल्लाह ताला को ये चाहिए। अल्लाह ताला ने रिजल्ट्स तो अपने हाथ में रखे हुए, अल्लाह ने रिजल्ट्स तो अपने हाथ में रखे हुए, अल्लाह ताला कहते हैं आई डोंट केयर इन योर रिजल्ट्स, आई केयर इन योर इंटेंशंस एंड इन योर एफर्ट, दैट्स इट, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान वाला मामला है कि वो ज्यादा आसान वाला मामला है जिनके पीछे हम भागे चले जा रहे होते हैं, ठीक है ना भाई, उनको छोड़ें, अल्लाह के पीछे भागें, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे फरमाते हैं, ला उअज्जिबन्नहु अजाबन शदीदन औ ला अज़बहन्ना, कि इब्तदाई गौर फिक्र के बाद ये हाकिमाना सियासत का मुजाहरा है कि गैर हाजिर रहने वाले को सजा दी जाए। हाकिमाना सियासत यानी जो हुकूमत करता है, पॉलिटिकल अथॉरिटी जिसके पास होती है, तो उसको जो है फिर दोनों काम करने होते हैं ना, पहले तो अपने जो रिपोर्टीज होते हैं, अपने जो आवाम होती है उनको जो है वो इंसेंटिव्स देने होते हैं, ठीक है, उनको जो है मोटिवेट करना होता है। लेकिन अगर मोटिवेशन और इंसेंटिव्स के बावजूद कोई गलत काम करेगा तो फिर उसकी पिटाई भी करनी होती है, ठीक है। तो ये सियासत का उसूल,
पकड़
पकड़, हाँ पकड़ पकड़ भी करनी होती है, पिटाई भी करनी होती है, उसको जेल में भी डालना होता है या सजा भी देनी होती है। तो हाकिमाना सियासत जो है ना इसी को कहते हैं। तो फरमाते हैं कि जो जानवर, अच्छा अब इसके ऊपर इन्होंने एक और फिकी नुक्ता, ठीक है, कि जो जानवर काम में सुस्ती करे उसको मोतदिल मोतदल सजा देना जायज है, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है तो जानवर को सजा देने का है ना कि भाई मैं उसको यानी अजाब दूंगा, उसको मैं जबा कर दूंगा। तो इस वजह से फिता का एक उसूल मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने यहाँ पे बयान फरमा दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हक ताला ने जानवरों को ऐसी सजाएं देना हलाल कर दिया था जैसा कि आम उम्मतों के लिए जानवरों को जबह करके उनके गोश्त पोस्त वगैरह से फायदा उठाना अब भी हलाल है, ठीक है। यानी जानवर को जबह करके उनके गोश्त से फायदा उठाना, खाना उसको, और इवन उसकी खाल से फायदा उठाना हमारे लिए हलाल है। इसी तरह पालतू जानवर गाय, बैल, गधा, घोड़ा, ऊंट वगैरह अपने काम में सुस्ती करे तो उसको तादीब के लिए बकदरे जरूरत मारने की मुतदल सजा अब भी जायज है, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा मारने की इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर, लेकिन मुतदल यानी बैलेंस तरीके से मारना जो है ना, वो घोड़े को जैसे चाबुक से मारा जाता है या किसी गाय बैल वगैरह को मारा जाए चाबुक से, तो वो चीज जायज है, इससे ज्यादा जायज नहीं है शरीयत के अंदर। लेकिन इनके अलावा जो दूसरे जानवर है ना, जिनसे कि ना तो इंसान जो है वो खाने का फायदा लेता है और ना जो है वो उनसे सवारी का या हल चलाने का फायदा लेता है। वो जो वहशी जानवर कहलाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, तो उनके बारे में लिखते हैं कि दूसरे जानवरों को सजा देना हमारी शरीयत में ममनू है। यानी हम जो है ना वो यानी चीते को, लायन को और हाथी को, वैसे हाथी से भी बारबरदारी का काम लिया जाता है इंडिया के तरफ खुसूस, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई जानवर हो जो कि वाइल्ड में ही रहने वाले हैं तो उनको सजा देना ना शरीयत के अंदर उसकी इजाजत नहीं है। उसी तरीके से आपको पता ही होगा कि खाली गेम के लिए, फन के लिए चिड़ियों का शिकार करना या किसी और जानवर को जो है वो मार देना भी निशानाबाजी कर रहे हैं, है ना। अपनी नई जो है वो गन खरीद करके लेकर आए तो उसकी निशाना करने के लिए, तो चलो भाई कोई वो जानवर जा रहा था उसको मार दिया, इसकी इजाजत नहीं है, ठीक है। जैसे कुत्ते जो है वो हमारे यहाँ तो बेशुमार सड़क के ऊपर फिर रहे होते हैं, तो भाई वो बस ऐसी शौक की खातिर जो है वो कुत्तों को मारना शुरू कर दिया, इसकी इजाजत नहीं है। शौक की खातिर इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक्सेप्शनल अथॉरिटी क्यों थी? क्योंकि उनको तो बाकायदा ये जानवर जो है वो रियाया के तौर पर दिए गए थे, जिनसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बाकायदा काम लिया करते थे ना, तो रियाया के साथ तो फिर वही वाला उसूल चलेगा जैसे कि इंसानों के साथ या जिन्नों के साथ या जानवरों के साथ। काम करो तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं काम करोगे तो भाई कुछ सजा मिलनी देनी पड़ेगी। फिर औलयातियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन, यानी अगर हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी का कोई उजुर वाजह पेश कर दिया तो वो इस सजा से महफूज रहेगा, ठीक है। वो मेरे पास ले आए कोई जेन्युइन एक्सक्यूज, ठीक है, लेम एक्सक्यूज नहीं, तो मैं फिर उसको माफ कर दूंगा। इसमें इशारा है, ठीक है, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह और उनके जैसे जो दूसरे फुकहाए कराम होते हैं ना कुरान मजीद को, जिन्होंने इन डेप्थ जो है वो समझा होता है, हदीस मुबारकों को इन डेप्थ जो है वो स्टडी किया होता है, तो उनका क्या काम क्या होता है कि वो कुरान मजीद और हदीस मुबारक से अहकामात ड्राइव करते हैं, इसी को फिका कहते हैं, ठीक है। अहकामात ड्राइव करना इन सोर्सेस से, कुरान मजीद और हदीस मुबारक, तो ये मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह यहाँ पर भी यही कर रहे हैं कि एक वाकया हुदहुद का बयान हो रहा है लेकिन हुदहुद के वाकये से जो है वो शरीयत के अहकामात ड्राइव कर रहे हैं। तो फरमाते हैं कि इसमें इशारा है कि हाकिम को चाहिए कि जिन लोगों से कोई कसूर अमल में सरजद हो जाए उनको उजुर पेश करने का मौका दे। अब यहां पर कोई हलाल हराम वाला उसूल ड्राइव नहीं कर रहे, बल्कि यहां पर एक इखलाकी उसूल, एक मोरल प्रिंसिपल ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, कि उनको चाहिए कि एक्सप्लेनेशन का जो है ना वो मौका फराहम करे, उजर अगर सही साबित हो तो सजा को माफ कर दे। ये नहीं कि बस मुझे जो है वो रिपोर्ट मिली है कि इसने जो है ना ये गुनाह, ये गलत काम किया है, तो बस उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए मैंने इसको सजा दे दी, नहीं, बल्कि कोर्ट के अंदर हाजिर किया जाएगा, वहां पर ये अपनी सफाई पेश करेगा, ठीक है। अब वहां पर अगर प्रूव हो गया, प्रोवन गिल्टी, फिर तो उसको सजा दी जाएगी, वरना उसूल क्या है, इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी, प्रोवन गिल्टी, ठीक है, जब तक प्रूव ना हो जाए इसकी गिल्ट उस वक्त तक ही इनोसेंट ही समझा जाएगा, ठीक है। सिर्फ खबर के ऊपर किसी को सजा नहीं दी जाएगी। अब यहां पर एक नुक्ता तो ये आपके सामने बयान किया ना कि फुकहा जो है वो डिराइव करते हैं एक तो शरी उसूल, हलाल क्या है हराम क्या है, दूसरा ये कि इखलाकी उसूल ड्राइव करते हैं, ठीक है, कि मुबाह क्या चीज, क्या चीज मुबाह है, क्या चीज मुस्तहब है, क्या जो है वो इखलाकी एतबार से ज्यादा अफजल तरीका है काम करने का, क्या इखलाकी एतबार से ममनू तरीका है काम करने का, ठीक है। तो ये है फुकहा का काम। लेकिन यहाँ पर एक और भी बड़ा अहम नुक्ता है जिसको कि हम वैसे तो यानी एक कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन अक्सर जो है ना वो हमसे यहाँ पर एक भूल हो जाती है, हम इसको मिस आउट कर जाते हैं अपने मामलात के अंदर, मिस आउट कर जाते हैं इस प्रिंसिपल को। वो क्या कि दुनिया जो है ना ये मेरी नहीं है, दुनिया तेरी नहीं है, ये तेरी मेरी दुनिया नहीं है, ठीक है ना, ये ना आपकी दुनिया है ना ये मेरी दुनिया है। उसी तरह दुनिया के अंदर जो कुछ है ये ना आपकी बनाई हुई चीज है ना ये मेरी बनाई हुई चीज है, ठीक है ना, ये ये क्रिएटर, एक क्रिएटर की बनाई हुई चीज है सब कुछ, चाहे वो इंसान हो, जिन हो, हैवान हो, दरख्त हो, चरंद परिंद हो, या जमीन की दूसरी रिसोर्सेज हो, सब कुछ जो है ना वो एक क्रिएटर का बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब इनके मुआमलात जो है ना वो इनके साथ कैसा मुआमला करना चाहिए, क्या चीज इनके लिए मुफीद है, क्या चीज इनके लिए गैर मुफीद है, क्या चीज इनके लिए नुकसानदेह है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो इनके बनाने वाले से लेनी है, ठीक है। बनाने वाले को पता होता है कि उसने क्रिएशन को कैसे बनाया है और किस लिए बनाया है, उसका बेनिफिट किसके अंदर रखा है और उसका हार्म किसके अंदर रखा है, ठीक है ना। ये सारा के सारा किसको पता होता है, बनाने वाले को पता है ना। मिसाल के तौर पर आपका एक लैपटॉप है मेरे सामने जो है वो पता नहीं क्या डेल है, डेल का लैपटॉप रखा हुआ है, तो भाई डेल का लैपटॉप जो है उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसको क्या करूंगा कि मुझे उससे बेनिफिट मिलेगा, क्या करूंगा कि मुझे जो है वो हार्म हो जाएगा, ये लैपटॉप जो है वो मिस मैल फंक्शन करना शुरू हो जाएगा, भाई ये सारा का सारा सबसे ज्यादा किसको पता है, सबसे ज्यादा तो क्या बल्कि सिर्फ ये किसको पता है, असल में ये किसको पता है, डेल की मैन्युफैक्चरर्स को पता है ना, ठीक है। बाकी जिन लोगों को भी पता है कि इस लैपटॉप में क्या फायदा क्या नुकसान, ये सारे के सारे वही लोग होंगे ना कि जिन्होंने के डेल कंपनी से जो है वो उसके लैपटॉप के स्ट्रक्चर को समझा है, उसकी फंक्शनिंग को समझा है, ठीक है। तो या तो भाई डेल के मैन्युफैक्चरर से जाकर के खुद पूछो, या डेल से जिन लोगों ने ट्रेनिंग हासिल करी है उनसे पूछो, ठीक है। अब जो है ना अगर आप, यानी कितनी कॉमन सेंस की बात है, कितनी, यानी हमें पता है ये बात और हम इसके ऊपर अमल भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं अपने सारे मामलात के अंदर, ठीक है, कि भाई अगर इस डेल के लैपटॉप के बारे में आप जो है ना वो, यानी सड़क पे चलते हुए किसी, यानी सामने जो कॉफी शॉप है, ठीक है ना, अब कॉफी शॉप के अंदर एक बंदा जो है वो कॉफी बनाना जानता है, उस बंदे से जाके पूछेंगे यार ये डेल का जो लैपटॉप है ना आप मुझे इसके बारे में बताएं कि मैं कैसे इससे फायदा हासिल कर सकता हूँ और इस लैपटॉप को खराब होने से मैं कैसे बचा सकता हूँ, तो यार उस कॉफी शॉप में के अंदर बैठ के काम करने वाले को क्या पता है डेल का जो लैपटॉप है उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, क्या चीज है उसके अंदर, ठीक है ना। अब वो बैठ करके जो है ना वो यानी अपनी अकल इस्तेमाल करना शुरू कर दे कि डेल को मैं कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ, लैपटॉप को क्या कर सकता है, तो भाई कुछ ना तुक्के तो उसके चल जाएंगे, बहुत मेहनत करने के बाद उसको कुछ जो है ना वो चीजें समझ में भी आनी शुरू हो जाएंगी, है ना, कि लैपटॉप के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन कितना ज्यादा एक तो उसको टाइम लगाना पड़ेगा, फिर वो कितनी जो है वो नुकसान कर जाएगा रास्ते के अंदर ना, इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो पता नहीं, यानी इसको कहते हैं ना लैपटॉप की जो है वो ऐसी की तैसी हो जाए उसके इस एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर, सीखने सिखाने के अंदर, ठीक है ना, फिर भी जो है ना वो उसकी सही फंक्शनैलिटी को जो है वो नहीं समझ सकेगा, बहुत टाइम लगेगा फिर कहीं जाकर के शायद थोड़ा बहुत समझ सके, है ना। तो ये कॉमन सेंस वाली बहुत बात जो है ना वो क्या मुश्किल है हमारे समझ में आना, लेकिन ये हम एक डेल के लैपटॉप के लिए तो इस बात को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन इंसानी जिंदगी, इंसान का मकसद, दुनिया को जो है वो कैसे चलाना है, दुनिया का जो है वो निजाम, दुनिया के इंसानों का जो है वो पूरा, यानी सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए कैसे नहीं चलनी चाहिए, ये सारा का सारा सीखने के लिए हम किसके पास जा रहे होते हैं, कि जिसके पास ना तो किताबुल्लाह होती है ना उसके पास जो है वो रिजालुल्लाह होते हैं, राइट। ना तो किताबुल्लाह है जिसके अंदर के जो है वो सारे के सारे इसके इंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स वाले सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है ना, तो उनके पास किताबुल्लाह है और ना उनके पास जो है वो ट्रेंड रिजालुल्लाह है, ना ऐसे बंदे हैं कि जो कि अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल के से तरबियत याफ्त हैं, राइट। हम ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं कि भाई हमें बताओ कि हमें जो है ना वो कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, राइट, हम कैसे जो है वो अपनी जाती जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं और हम कैसे जो है ना वो अपने मुल्क को तरक्की दिलवा सकते हैं, या हम अपने मुआशरे को कैसे जो है ना वो ज्यादा अच्छा मुआशरा बना सकते हैं, तुम हमें बताओ भाई, वो कैसे आपको बताएगा ना, उसने वही करना है जो कि कॉफी शॉप के अंदर बैठा हुआ जो बंदा है ना वो डेल लैपटॉप के बारे में जिस तरीके से बताएगा ना आपको, वो भी उसी तरीके से आपको बताएगा, है ना, वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा, करते रहेगा, पहले जो है वो डार्क एजेस में लेकर के जाएगा आपको, राइट, जैसे कि यूरोप वाले जो है वो डार्क एजेस में थे, फिर डार्क एजेस से जो है वो निकलेगा तो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज में आपको पहुंचा देगा, जैसे यूरोप वालों ने आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज में पहुंचा दिया, अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज में पहुंचाने के बाद उन्होंने जो है ना वो बहुत सारी मशीनें बना ली, उन्होंने बहुत सारे जो है ना वो प्रोडक्ट्स बना लिए, और प्रोडक्ट्स और मशीनें बनाने के चक्कर में उन्होंने जो है वो इंसानियत को बर्बाद करके रख दिया, राइट। इंसानी मुआशरे को, इंसान की जो है वो साइकिक को, इंसान की जो है वो मोरालिटी को, इंसान की जो है वो यानी फैमिली स्ट्रक्चर को, हर चीज की यानी ऐसी की तैसी करके रख दी उन्होंने, राइट। और उन्होंने ये सारी की सारी जो अपनी मेहनत करी है, जिसके ऊपर हम खूब जो है वो खुश होते हैं, उनकी बेस्ट सेलर जो बुक्स है ना, उनको रिफर करने के पीछे भी जब भागते हैं कि हाँ जी फलाने इंटेलेक्ट, वो जो इंग्लैंड का जो है ना बड़ा थिंकर है ना, उस थिंकर ने जो है वो ये बातें लिखी हैं इंसानियत को कैसे चलाना चाहिए, तो वो भी सारे के सारे मुसलमान जो है ना उसको जाकर के पढ़ रहे हैं, राइट। और यार उसने जो है वो अपनी जिंदगी लगा करके जो है वो बिलाआखिर गिरते पड़ते, बल्कि गिरते पड़ते भी नहीं, गिराते पड़ाते है ना, दुनिया को जो है बर्बाद करते करते बिल आखिर जो है वो अगर वो 4 पॉइंट्स के ऊपर पहुंच भी गया है, राइट, 4 पॉइंट्स के ऊपर वो बिल आखिर पहुंच भी गया, तो तुम्हें उधर ही जाकर के जो है वो सारी चीजें सीखनी है। जिसको तुम अल्लाह का रसूल कहते हो उसके पास क्यों नहीं जाते हो तुम? जिसको तुम अल्लाह का किताब कहते हो, अल्लाह की किताब कहते हो, तुम मुसलमान कहते हो ना अपने आप को? टक्करे मारने के लिए और चक्करे लगाने के लिए तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो क्या, राइट? तो तुम अपनी जिंदगी के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए तुम अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल के पास जाने की बजाय जो है ना, जिसने टक्करें मार मार करके जो है वो अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर दी और पूरे मुआशरे को भी बर्बाद कर दिया, तुम उसकी किताबों के अंदर जाकर के तलाश करते हो इन जवाबात को, जो कि तुक्के मार मार के बिल आखिर जो है वो चंद पॉइंट्स के ऊपर पहुंचा है, मरते मराते और मारते मारते सबको, राइट। तो अल्लाह ताला को क्या गुस्सा वुस्सा कोई नहीं आता? हमारा क्या ख्याल है? अल्लाह ताला को जलाल नहीं आता? अल्लाह ताला को गुस्सा नहीं आता होगा इसके ऊपर, राइट? क्या समझते हैं हम अल्लाह ताला को ना, राइट? हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें अंदाजा नहीं है कि अल्लाह ताला जो है ना उनका जलाल उसका क्या मतलब होता है। हम अल्लाह ताला को अपनी इन हरकतों की वजह से और अपनी ये सोच की वजह से है ना बहुत ज्यादा गुस्सा दिला चुके हैं, और अगर हम इस गलतफहमी के अंदर मुब्तला है कि अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो ख्वाबो ख्याल की दुनिया है, हकीकत का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह ताला हमसे खुश है अल्लाह ताला के साथ और अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब के साथ, ये रवैया इख्तियार करने के बाद हम समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे खुश है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो औलयातियन्नी बिसुल्तान मुबीन से इन्होंने जो है ना ये सारी की सारी गाइडेंस कहाँ से ले रहे हैं? कुरान मजीद से ले रहे हैं, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद कुरान मजीद से अगर आप बराह रास्त अगर कोई गाइडेंस नहीं ले सकते, तो जिन्होंने कुरान मजीद के अंदर ट्रेनिंग हासिल करी है, जिनको कि उलमाए कराम कहा जाता है, फुकहाए मिल्लत कहा जाता है, तो उन्होंने फिर ड्राइव कर करके हमारे सामने ये सारी की सारी गाइडलाइंस रखी हैं, ठीक है। तो यही हमें करना है। अगर हमें सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए उलमाए कराम के पास नहीं जाना है, इस आजिज ने पूरा मुकम्मल इस टॉपिक के ऊपर एक कम से कम बयान किया हुआ है कि सियासत जो है ना मुल्क कैसे चलाना है, मुल्क कैसे चलाना है, ये उलमाए कराम के अलावा कोई नहीं बता सकता कि मुल्क कैसे चलाना है, उलमाए कराम के अलावा कोई नहीं बता सकता कि सियासत कैसे करनी है। हम जो है ना वो इंजीनियरिंग और सड़कें बनाने और जो है ना वो यानी ये जो डैम बनाना और सड़क बनाना और हस्पताल बनाना और ये इस किस्म के जो तरक्याती काम यूरोप से हम सीख करके आए हैं ना कि यही तरक्याती काम होते हैं, हम इनको समझते हैं कि ये फलाह बहबूद है इंसान की, ये इंसानियत की फलाह बहबूद है। हमें कुछ नहीं पता, हमें अलिफ का बे नहीं पता कि इंसानियत की फलाह बहबूद होती क्या है, होती क्या है इंसानियत की फलाह बहबूद। हमें अलिफ बात ता तक भी नहीं पता कि इंसानियत की फलाह बहबूद क्या होती है। हमने फिजिकल स्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग है ना, डैम और ये जो है वो पुल बना देना और स्काई स्क्रेपर बना देना और उस किस्म के जो है ना वो स्टेडियम्स बना देना और ये बना देना, इसको हमने इंसानियत की फलाह बहबूद समझ के रखा हुआ है। बेवकूफ है हम बिल्कुल, ठीक है। तो भाई जो अल्लाह जिसने के इसको बनाया है इंसान को, जिसने इस पूरी की पूरी दुनिया को बनाया, उसने जो अपना इल्म नाजिल किया है अपनी किताब के अंदर, वो तुम्हारे किसी सियासतदान को पता है? जिसने के वो पीएचडी किया था वहां पे ऑक्सफोर्ड में और हार्वर्ड में जाकर के पीएचडी किया था, उसको इसकी अलिफ भी पता हो सकती है कि अल्लाह क्या चाहता है इंसानों से, अल्लाह ने इंसानों को और दुनिया को किस मकसद के लिए बनाया और इसकी बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जा सकता है? वो कोई हार्वर्ड और एमआईटी का पीएचडी बता सकता है ये वाली बात? हरगिज नहीं बता सकता, हरगिज नहीं बता सकता। वो तो अंधा है, वो तो बहरा है, वो तो गूंगा है, वो तो इसकी इसके करीब करीब तक नहीं पहुंच सकता। क्या समझ रखा है हमने? अकल के कुछ नाखून लेने की जरूरत है ताकि हमारे कुछ तो हालात बेहतर हो जाए ना हमारे। तो फरमाते हैं अहद तो बीमार लम तो हद भी, कि यानी हुदहुद ने अपना उजर बतलाते हुए कहा कि मुझे वो चीज मालूम है जो आपको मालूम नहीं है, यानी मैं एक ऐसी खबर लाया हूं कि जिसका आपको पहले इल्म नहीं था। ठीक है, तो अम्बिया अलैहिस्सलाम आलमुल गैब नहीं होते। ठीक है, गैब यानी जो चीज उनसे छुपाई हुई है अल्लाह ताला ने, वो उस चीज को नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया है। गैब का इल्म नहीं दिया, अल्लाह ताला ने उनको सारी खबरें दी हुई हैं। ठीक है, अखबारुल गैब दिया हुआ उनको, खबरें दी हुई हैं उनको कि ये क्या चीज कैसे हुई थी, क्या चीज कैसे हो रही है, क्या चीज कैसे होगी, जो जो जरूरत थी वो सारा इल्म अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को दे दिया। ठीक है, इमाम कुर्तुबी ने फरमाया कि इससे वाज़े तौर पर मालूम हुआ कि अंबिया अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं होते जिससे उनको हर चीज का इल्म हो सके। हर चीज से मुराद के हर चीज का इहाता करे उनका इल्म, जैसे अल्लाह ताला का इल्म हर चीज को इहाता करता है, अंबिया अलैहिस्सलाम का इल्म हर चीज को इहाता नहीं करता। ठीक है, वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, तो हुदूद ने कहा था कि मैं लेकर के आता हूं आपके पास सबा मुल्के सबा से एक यकीनी खबर। तो फरमाते हैं कि सबा यमन का एक मशहूर शहर जिसका एक नाम मआरिब भी है, उसके और यमन के दारुल दारुल हुकूमत सनआ, जा आजकल उसका नाम सना सना है ना शायद, क्या यमन के अंदर, तो सनआ के दरमियान 3 दिन की मुसाफत थी। उस जमाने में ऊंटों पर जो सफर किया था उस हिसाब से 3 दिन में पहुंचते थे। तो क्या छोटे अच्छा, तो ये हो गई यानी एक तो इस आयत के बारे में। अब इसके अंदर से एक और हजरत जो है वो एक अदबी नुक्ता निकाल रहे हैं। ठीक है, कि क्या छोटे आदमी को ये हक है कि अपने बड़ों से कहे कि मुझे आपसे ज्यादा इल्म है। ठीक है, हमारे यहाँ आजकल दूसरे एक दर्स के अंदर टॉपिक चल रहा है तालीमी निजाम के ऊपर। ठीक है, तो उस तालीमी निजाम का जो सबसे बेहतरीन खाका या जो 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 उसको डिस्क्राइब किया है ना, वो अकबर इलाहाबादी के इन अशार ने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, वो इस टॉपिक से बड़ा ताल्लुक रखते हैं, तो या जो वो शेर भी आपको सुना के आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। अकबर इलाहाबादी ने क्या फरमाया था कि हम ऐसी सब किताबें काबिले जब्ती समझते हैं, हम ऐसी सब किताबें काबिले जब्ती यानी हम उनको जो है ना वो जब्त कर लेना, उनको जो है वो लोगों से छीन लेना वो सही समझते हैं। हम ऐसी सब किताबें काबिले जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। ठीक है, कि जिन किताबों को पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। अब बच्चे बाप को खपती समझते हैं का मतलब जो है ना, वो हम हंसी मजाक में अकबर इलाहाबादी की ज्यादातर शायरी जो है ना लोग समझते हैं ये जोक किया करते थे, ये मजाक किया करते, तो लोग हंसते हैं इनकी शायरी पढ़ करके बड़ा। ठीक है, लेकिन हजरत अपने इन शायरी के अंदर ऐसी ऐसी बातें कह गए
बिल्कुल
थे कि जो कि हमारी अकल से अक्सर बालातर हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह गए थे। तो बच्चे बाप को खपती समझते हैं का मतलब जो होता है ना, ये नहीं कि बस हर बेटा जो है वो बाप को खपती समझ रहा है, नहीं, बल्कि ये जो यहाँ पे हजरत ने लिखा है, छोटे आदमी को क्या ये हक है कि वो बड़ों से कहे। क्या मतलब कि जिसको अल्लाह ताला ने छोटा बनाया है, छोटे आदमी का मतलब साइज में छोटा नहीं कि बोना है डॉर्फ है और बड़े आदमी से मुराद जो है वो कोई जायंट है, नहीं, छोटे और बड़े का की असल तारीफ क्या होती है, जिसको अल्लाह ने छोटा बनाया है वो छोटा है और जिसको अल्लाह ने बड़ा बनाया है वो बड़ा है। ठीक है ना, अब अल्लाह ने छोटा बनाया बड़ा बनाया का मतलब क्या, इसकी ये मिसाल से समझ में आ सकता है कि जिसको अल्लाह ने अपना रसूल बनाया वो बड़ा है, जिसको अल्लाह ने उम्मती बनाया वो छोटा है। ठीक है, जिसको अल्लाह ने अमीर बनाया, अमीर से मुराद यानी हुक्मरान अमीर, वो बड़ा है, और जिसको अल्लाह ने रियाया बनाया वो छोटा है। ठीक है, जिसको अल्लाह ने बाप बनाया वो बड़ा है, जिसको अल्लाह ने बेटा बनाया वो छोटा है। ठीक है, जिसको अल्लाह ने अपना इल्म दिया, अपनी किताब का इल्म दिया वो बड़ा है, और जिसको अल्लाह ने अपनी किताब का इल्म नहीं दिया वो छोटा है ना, चाहे उसकी दाढ़ी जो है वो सफेद हो चुकी हो, और जिसको किताब का इल्म दिया था उसकी दाढ़ी जो है वो अभी काली हो, राइट, उसकी उम्र जो है वो 40 साल हो, और जिसके पास इल्म नहीं है वो 80 साल का हो, नहीं, जिसके पास इल्म नहीं है वो कितने भी साल का हो, कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो, वो छोटा है, और जिसके पास इल्म है वो बड़ा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने निजाम बनाया था छोटों और बड़ों का, और साथ साथ जो है वो ये छोटों के ऊपर लाजमी कर दिया कि वो अपने बड़ों के साथ अदब से पेश आए। जबकि जो अल्लाह के दुश्मनों का बनाया हुआ तालीमी निजाम है, ठीक है, जो अल्लाह के दुश्मन का बनाया हुआ तालीमी निजाम है वो इसको रिवर्स करने की कोशिश करता है, और बड़ी हद तक कामयाब भी है उसके अंदर, कि उसकी किताबों को और उसके निजाम के अंदर जो पढ़ता है ना, जो उस निजाम के अंदर पलता है, बल्कि पढ़ता भी नहीं पलता है, तो वो फिर इस निजाम को रिवर्स करता है कि वहां पर जो है वो छोटा बड़े को खपती समझना शुरू कर देता है, हर छोटा हर बड़े को खपती समझना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहां फरमाया क्या छोटे आदमी को यह है कि वो अपने बड़ों से कहे कि मुझे आपसे ज्यादा इल्म है, तो फरमाते हैं ये पैराग्राफ जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कशन क्लास में करेंगे, कि हुदहुद की मजकूरा गुफ्तगू से बाज लोगों ने इस पर इस्तदलाल किया है कि कोई शागिर्द अपने उस्ताद से तो चलें बस इसको पढ़ लेता हूँ, कि मगर रूहुल मानी में फरमाया कि यह तर्ज गुफ्तगू अपने मशायख और बड़ों के सामने खिलाफ अदब है, इससे एहतराज करना चाहिए, और हुदहुद के कौल से इस पर इस्तदलाल इसलिए नहीं हो सकता कि उसने ये बात अपने आप को सजा से बचाने और उजुर के कवी होने के लिए कही है, ताकि उसकी गैर हाजिरी का उजुर पूरी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आ जाए, ऐसी जरूरत में अदब की रियायत रखते हुए कोई बात की जाए तो मुजायका नहीं है। ठीक है, अब चूंकि टाइम खत्म हो चुका है तो इसकी एक्सप्लेनेशन या इसके ऊपर जो बात की जा सकती है उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, तो उस वजह से हम यहीं पे क्लास रोक देते हैं। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।